नमस्कार भारत 19 मई दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद भारत ने कूटनीतिक जीत का किया दावा, अब क्या करेगा पाकिस्तान?
कुलभूषण जाधव को अगर फांसी की सजा बरकरार भी रखता है तो फांसी शायद नहीं देगा, क्योंकि उसके जो असरात बहुत ज्यादा संजीदा होंगे।
झारखंड में बच्चा चोरी के संदेह में 6 लोगों की पीट पीट कर हत्या, इलाके में तनाव, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। ईरान में आज होगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, राष्ट्रपति रूहानी को मिल रही है कड़ी चुनौती।
देखिए, जब ये इन्होंने एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट, तो उससे ये निकला था कि नौकरियां मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमी पिकअप होगी, वो नहीं हुआ, तो ये चीज रूहानी साहब के खिलाफ जा रही है।
पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण सुधीर जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि जब तक उनके मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता नैन्सी पोलेसी ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास छिपाने को कुछ नहीं है, तो वो बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित हस्तक्षेप की स्वतंत्र जाँच होने दें। पेलोसी ने कहा कि इससे सच्चाई छिपाई जा रही है या नहीं, ये साबित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसे भी मामले की जांच करने वाले मुख्य अभियुक्ता रॉबर्ट मुलर ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग की निगरानी में ही काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चुनावों में कथित रूसी हस्तक्षेप की जांच को प्रभावित करने के आरोपों से इनकार करते रहे हैं। मुख्य अभियुक्ता रॉबर्ट मुलर की नियुक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि इससे देश को धक्का लगा है। उन्होंने कहा,
Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt, and there is no collusion between certainly.
वैसे मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है, और मेरे कैंपेन में कोई मिलीभगत नहीं है। मैं हमेशा अपने और रूसियों के बारे में बोल सकता हूं। मुझे लगता है कि यह देश को बांट रहा है। मैं मानता हूं कि हम पहले ही अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हम इस महान देश को एक साथ लाना चाहते हैं, और मैं कह सकता हूं कि इसमें हमें काफ़ी सफलता हासिल हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमेयर ने टेलीविजन पर दिए एक भाषण में कहा है कि वो इसीलिए इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार स्कैंडल के मामले में एक गवाह को रिश्वत देने का आरोप है। टेमेयर ने कहा कि वो कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि मौजूदा हालातों में देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने की कोशिशों को झटका लग सकता है। हाल में हुए एक भ्रष्टाचार के कारण देश का मुख्य सूचकांक 10% तक नीचे आ गया था। माइकल टेमेयर ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं जानता हूं मैंने क्या किया है, और जो भी किया है वो सही किया है। मैं मांग करता हूं कि ब्राजील की जनता के लिए इस मामले की पूरी जांच करवाई जाए, और जल्द ही जांच करवाई जाए। ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमेयर के शब्द। सीरिया में अमरीकी लड़ाकू विमानों ने सरकार समर्थक मिलिशिया बलों के एक काफिले पर हमला किया है। अमरीकी नेतृत्व में गठबंधन सेना ने एक बयान में कहा है कि ये काफिला इराक की सीमा के पास मौजूद तानफ सैन्य अड्डे की तरफ जा रहा था, जहां वेस्टर्न स्पेशल फोर्सेस कथित इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए विद्रोही गुटों को प्रशिक्षित करती हैं। अमरीकी अधिकारियों के अनुसार चेतावनी देने के लिए पहले गोलियां चलाई गई थी, लेकिन जब इसे नज़रअंदाज कर काफिला आगे बढ़ा तो हवाई हमले किए गए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि मशहूर रॉक सिंगर क्रिस कॉर्नेल ने खुद को फांसी लगा ली है। 52 साल के क्रिस कॉर्नेल डेट्रॉयट में अपने बैंड साउंड गार्डन के साथ शो कर रहे थे। डेट्रॉयट पुलिस के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि उन्हें बुधवार आधी रात को एक फोन कॉल आया था। मौके पर पहुंचने के बाद कॉर्नेल का शव बाथरूम में पड़ा मिला। डॉक्टरों का कहना है कि मौत फांसी लगने से हुई है, लेकिन शव परीक्षा की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही और जानकारी मिलेगी। साल 2006 में उनके गाए गीत यू नो माई नेम को जेम्स बॉन्ड फिल्म कैसिनो रॉयल का मुख्य गीत के रूप में चुना गया था। बीबीसी समाचार।
आज है 19 मई दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत और आपके साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। कल हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव मामले में भारत की दलीलों को मानते हुए फिलहाल फांसी पर रोक लगा दी है। भारत ने जहां इसे एक कूटनीतिक जीत कहा है, वहीं पाकिस्तान इसे खारिज कर रहा है। वैसे तो ये फैसला अंतरिम है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इससे कुलभूषण जाधव मामले में कोई फर्क नहीं आया है। संदीप सोनी की रिपोर्ट।
कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर फिलहाल रोक लग गई है। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कल ये फैसला सुनाया गया।
Under the present circumstances, it is appropriate for the court.
मौजूदा हालात में अदालत ये आदेश देना मुनासिब समझती है कि पाकिस्तान ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करेगा कि जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक कि इस कार्यवाही का अंतिम फैसला नहीं आ जाता।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने इस फैसले को सर्वसम्मत और पाकिस्तान के लिए बाध्यकारी फैसला बताया है।
The court reaffirms that its orders on provisional measures.
अदालत दोबारा इस बात की पुष्टि करती है कि अस्थायी उपायों पर उसका फैसला बाध्यकारी है और संबंधित पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यताओं का पालन करना होगा।
इस खबर के आने के बाद भारतीय खेमे में जाहिर तौर पर खुशी और पाकिस्तान के खेमे में असंतोष जाहिर किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ।
अभी जो फैसला तो यही उन्होंने कहा है कि ये इसको अभी फांसी ना दें, तो अभी तो दो लेयर्स बाकी थीं उसको, वैसे ही उसको मुयस्सर थीं जहाँ पे वो अपील भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और सो इमिनेंट जो है वो हैंगिंग तो नहीं हुई हुई अभी, उसके पास रिलीफ के दो लेयर्स जो हैं अवेलेबल हैं। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि उससे जो जो उन्होंने स्टे दिया है, सो कॉल्ड इट्स मोर ऑफ ए थ्योरेटिकल स्टे, उनका जो है वो एक जैसे फॉर्मेलिटी।
वहीं भारतीय रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले से भारत को राहत मिली है और पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है।
Well, there is a great sense of relief as also happiness in India.
भारत को इस बात की खुशी है और उसे राहत मिली है कि ICJ ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। ये फैसला भले ही अंतरिम है, लेकिन इसने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में न्यायपालिका के नाम पर कानून का किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है।
47 वर्षीय कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में गिरफ्तार किया गया था। तब पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया था कि कुलभूषण जाधव ने भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने की बात कबूल की है। इसके बाद पिछले ही महीने पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। इसके जवाब में भारत ने कहा था कि कुलभूषण जाधव को गलत तरीके से फंसाया गया है, वे ईरान में कानूनी तौर पर कारोबार कर रहे थे। भारत ने पाकिस्तान से आग्रह किया था कि वो कुलभूषण जाधव से भारतीय अधिकारियों को मुलाकात का मौका दे, लेकिन इससे पाकिस्तान इनकार करता रहा। इसके बाद भारत ने कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गुहार लगाई। कल का फैसला भारत के पक्ष में आया, लेकिन अभी कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर लगी रोक स्थायी नहीं है। और क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल करेगा, ये सवाल भी अपनी जगह कायम है।
तो क्या ये माना जाए कि कुलभूषण जाधव अब सुरक्षित हैं? आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने कूटनीतिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन से बात की।
ये पाकिस्तान के ऊपर अब निर्भर करेगा कि क्या वो ICJ की ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम भी करते हैं या नहीं। अगर वो ICJ का जो जजमेंट है उसका पालन करते हैं और तस्लीम करते हैं, तो फिर तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट बात होगी। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम ICJ का ज्यूरिसडिक्शन तस्लीम ही नहीं करते, तो ICJ के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके तहत वो अपनी जजमेंट को एनफोर्स करवा सके। मेरा अनुमान ये है कि पाकिस्तान शायद ये पोजिशन ले कि वो ICJ की जो जजमेंट है उसको तस्लीम नहीं करता, उसकी ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम नहीं करता, लेकिन वो कुलभूषण जाधव को अगर फांसी की सजा बरकरार भी रखता है तो फांसी शायद नहीं देगा, क्योंकि उसके जो असरात भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों पर होंगे वो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा संजीदा होंगे। तो शायद ये एक बीच का रास्ता निकल के आए।
कुलभूषण जाधव मामले को एक पूरे एपिसोड की तरह देखा जाए अगर, तो ये पूरा एपिसोड, पूरा मामला, ये भारत सरकार के लिए क्या सबक है?
एक चीज जो भारत सरकार ने और खासतौर पर मोदी सरकार ने एक लिहाज से अपनी विदेश नीति का एक स्तंभ बना लिया है वो ये है कि इस सरकार के आने से पहले कोई भी भारत का निवासी अगर कहीं दुनिया में कोई लीगल ट्रबल में या किसी हालात में दुश्वार हालात में पाया जाता था तो उसको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होती थी। जो पश्चिमी देश थे उनके यहाँ पर उनका कोई भी व्यक्ति किसी भी जुर्म के तहत अगर उसको सजा होती थी कहीं पे भी तो वो उसमें हस्तक्षेप करते थे, वो उसमें उसकी रिप्रेजेंटेशन करते थे अपने निवासी की, अपने सिटीजन की, और वहां पर उसको रिलीफ देने की कोशिश करते थे और ये भी कोशिश करते थे कि उसकी सजा माफ होके या उसकी सजा बाकी जो बची है वो उसी के होम कंट्री में हो। भारत का ये रवैया नहीं था और भारत का जो बासी था अगर भारत के बाहर कहीं पे पकड़ा जाता था तो भारत सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं होता था। ये रवैया टोटली बदल गया है और भारत सरकार अब उसी तरीके से हस्तक्षेप करती है जिस तरीके से पश्चिमी देश अपने किसी भी नागरिक के लिए हस्तक्षेप करते थे। तो ये तो एक चीज जो है बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हो गई है, लेकिन क्या हर केस को इतने ही हाई प्रोफाइल दिया जाएगा या हर केस को आईसीजे में लेके जाया जाएगा? शायद नहीं। तो उसमें एक राजनीतिक और एक कूटनीतिक पहलू भी था इस पर्टिकुलर केस का, और खास तौर से क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व था तो शायद वो एक महत्वता थी इस केस की, लेकिन शायद हर केस में इस लेवल की हस्तक्षेप नहीं होगा।
सुशांत सरीन से बात कर रहे थे संदीप सोनी। कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर पाकिस्तान के अखबार क्या कर रहे हैं? अब से कुछ ही देर पहले मैंने इस्लामाबाद स्थित पत्रकार एहतशामुल हक से बात की।
देखिए जी, मेरे सामने सारे अखबार की डिटेल पड़ी हैं जिनमें बड़े बड़े अखबार हैं, डॉन है, दूसरा अंग्रेजी का अखबार द न्यूज है, फिर उर्दू का अखबार दुनिया है, डेली एक्सप्रेस है, इसी तरह से जंग अखबार है, उर्दू का बड़ा अखबार है। ये इनको कुछ हवाले दे देता हूँ। दुनिया अखबार जो है ये लिखता है जी, इसकी बड़ी स्टोरी मेन हेडलाइन है, हेडलाइन कुलभूषण को फांसी ना दी जाए, आलमी अदालत साथ। चार खबरें हैं इसकी बड़ी पूरे पेज पे। दूसरी खबर है आलमी अदालत का दोहरा मयार, 17 साल पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिया। सत्ताजी साहब ये कहते हैं आलमी अदालत ने सिर्फ राय दी है। फिर तहरीक इंसाफ ने लिखा है आलमी अदालत ने ना तजर्बाकार वकील चुना, जमात इस्लामी के सराजुल हक ने भी तनकीद की। अंग्रेजी का दूसरा अखबार जो है वो द न्यूज इंटरनेशनल कहता है आईसीजे स्टेज हैंगिंग ऑफ इंडियन स्पाई कुलभूषण यादव टिल फाइनल डिसीजन। अंग्रेजी का अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, और साथ ही इसकी दूसरी खबर है पीटीआई ऑफ इमरान खान प्लेन पीएम नवाज शरीफ आईसीजे स्टे ऑन यादव एग्जीक्यूशन।
जी है, तो शाम साहब में मेरा अगला सवाल यही था कि क्या वहाँ के अखबार में, वहाँ की मीडिया में पाकिस्तान सरकार को भी घेरने की कोशिश हुई है? क्योंकि आईसीजे में जो फैसला आया है उससे भारत क्लेम कर रहा है कि उसकी डिप्लोमेटिक विन हुई है, तो क्या पाकिस्तान की आलोचना हो रही है, सरकार की आलोचना हो रही है क्या अखबारों में?
जी बिल्कुल, जो ओपोजिशन जमातें हैं जी, खास तौर पे पीटीआई और जमात इस्लामी, इन्होंने तो बड़ा आड़े हाथों लिया, और फिर कुछ बयान भी आए हैं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े कानूनी माहरीन हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को नाम लेके ब्लेम किया है कि इनकी टीम सही नहीं थी, ना तजर्बाकार लोग लेके गए थे। और फिर एक इसी तरह से पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है, इन लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की यह नाकामी है। उस लिहाज से तो ये अखबारात जो है ना जी, वो नवाज शरीफ और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सख्त तनकीद कर रहे हैं, लेकिन सत्ताजी साहब का बयान सारे अखबारात में यही आया कि जी आलमी अदालत ने सिर्फ राय दी है। उनका यह ख्याल है कि जी आगे चल के फैसला उनके हक में आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ लोग आमतौर पर जो गवर्नमेंट के खिलाफ लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि तैयारी ना होने की वजह से जो है ना ये केस फॉर द टाइम बीइंग इंडिया के हक में गया है। जी
क्या एहतशाम साहब ये भी अखबार छाप रहे हैं या ये भी कहीं एनालिसिस है कि अब पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला कदम क्या होगा?
इसके बारे में कुछ खबरें भी छपी हुई हैं जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत जो है वो कानूनी माहरीन से मशवरा कर रही है कि अब आइंदा क्या करना है, किस तरीके से इस केस को आगे लेके जाना है। लेकिन आमतौर पर लोग ये कह रहे हैं कि कल तक तो पाकिस्तान का फॉरन ऑफिस भी और पाकिस्तान की दूसरी मिनिस्ट्री ये कह रही थी कि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, हमने अपना ये केस जीत लेना है, तो अब क्या हो गया है कि ये तीन दिन के अंदर में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया? तो उस हवाले से तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। हुकूमत ये बार बार ये कह रही है कि जी अभी हतमी फैसला नहीं आया, जब तक फैसला नहीं आ जाता आप नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान की इस हवाले से कोई फतह हुई है। लेकिन ओपोजिशन के लोग यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पहले मरहले में फैसला अपने हक में कर लिया।
इस्लामाबाद से पाकिस्तान के अखबारों की समीक्षा कर रहे थे एहतशामुल हक।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
झारखंड में कल उग्र भीड़ ने बच्चा चोर होने के संदेह में 6 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी। सरायकेला, खरसावां और जमशेदपुर में हुई इन घटनाओं के बाद इलाके में तनाव है। उग्र भीड़ ने पुलिस पर भी हमला किया और कई गाड़ियों को जला दिया। अब इन इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है और पुलिस भी वहां कैंप कर रही है। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
तब रात का अंधेरा था, सुबह के 3 बज रहे होंगे। झारखंड के तमाम लोग सो रहे थे, लेकिन सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के 3 गांवों में हलचल थी। वजह थी बच्चा चोरों के आने की अफवाह। अफवाह फैलते ही गोपीनाथपुर और कमलापुर गांवों के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और कथित बच्चा चोरों की खोज होने लगी। उसी समय 2 गाड़ियों में सवार कुछ लोग चाईबासा की तरफ जा रहे थे। ग्रामीणों ने उन्हें बच्चा चोर समझा और खदेड़ने लगे। इस बीच सुबह हो गई, मौके की नजाकत देख एक गाड़ी तो भाग गई, लेकिन दूसरी गाड़ी में सवार लोगों को ग्रामीणों ने शोभापुर गांव में पकड़ लिया, फिर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी लोगों ने हमला किया और गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस इस मामले की छानबीन कर ही रही थी, तभी कल देर रात जमशेदपुर के बागबेरा में ऐसी ही अफवाह फैली और भीड़ ने वहां भी 3 लोगों की हत्या कर दी। राज्य पुलिस प्रवक्ता और ADG ऑपरेशंस RK मल्लिक ने BBC से बातचीत में इसकी पुष्टि की। RK मल्लिक ने बताया,
देखिए ये तो इनफैक्ट 2 जगह घटना घट गई है। एक राजनगर वाली घटना तो अर्ली मॉर्निंग हुई, उसमें बच्चा चोर का रूमर फैल करके 3 लोग उसमें मारे गए, और अभी एक घटना बागबेरा में हुई है जमशेदपुर में, उसमें 3 लोग मारे गए
जी
बच्चा चोर का हमला करके। यही लग रहा है कि इट इज बेसिकली एक जो है इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो है फैल जा रही है कि बच्चा चोर अननोन आदमी कोई आ गया तो बच्चा चोर करके ये 2 घटना इधर घटी है और ये 2 घटना पहले जमशेदपुर में और घटी।
दरअसल कोल्हान प्रमंडल में पिछले 1 सप्ताह से ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। महज 4 दिन पहले जादूगोड़ा इलाके में भी भीड़ ने 2 लोगों को बच्चा चोर समझकर मार डाला था। 1 सप्ताह के अंदर बच्चा चोरों की अफवाह में कुल 8 लोगों के मारे जाने के बाद पुलिस सकते में है। DGP DK पांडे ने कोल्हान के DIG को जमशेदपुर में कैंप करने के आदेश दिए हैं। रैफ के साथ ही 200 अतिरिक्त पुलिस जवानों को भी प्रभावित जगहों पर भेजा गया है। इस बीच CID के ADG ने बताया है कि हाल के दिनों में इस इलाके में बच्चा चोरी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसे में पुलिस को इसकी बारीकी से जांच करनी होगी कि ऐसी अफवाह कौन फैला रहा है और उनकी मंशा क्या है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
झारखंड के बाद रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए करीब 50 वाल्मीकि परिवार ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, लेकिन अब वे इस दुविधा में हैं कि वे कौन सा धर्म अपनाएं। हालांकि प्रशासन किसी भी तरह के धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न की बात से इनकार कर रहा है और इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
मुरादाबाद में वाल्मीकि समुदाय के कुछ लोगों ने पिछले दिनों हिंदू धर्म का त्याग करते हुए देवी देवताओं की प्रतिमा का राम गंगा में विसर्जन कर दिया। गुरुवार को समाज के लोगों ने मुरादाबाद में मंडलायुक्त को कथित उत्पीड़न के बारे में एक ज्ञापन भी सौंपा। इन लोगों का कहना है कि अब वो कोई दूसरा धर्म अपनाएंगे जिसमें उत्पीड़न न होता हो। वाल्मीकि समाज के नेता लल्ला बाबू द्रविड़ ने BBC को बताया,
छुआछूत को लेकर दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, फायरिंग बाजी बढ़ रही है, फायरिंग कर रहे हैं, इसलिए धर्म का त्याग क्या है। उनमाओं से कल बात हुई थी तो वो लोग आज आए नहीं, पहले जब जाएंगे तो बहुत सोच समझ के जाएंगे, इसलिए पूरा विचार सभी के 500 परिवारों को लेके एक साथ जाना, बातचीत कल करके सब पूरा सब देख के जाएंगे। जिंदगी का सवाल है कि हम दूसरे घर में जाके सुरक्षित हैं या नहीं है।
लल्ला बाबू और उनके साथियों ने अभी किसी नए धर्म को नहीं अपनाया है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वो वापस हिंदू धर्म में नहीं लौटेंगे। वहीं मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश प्रताप सिंह से जब BBC ने जानने की कोशिश की तो उन्होंने धर्म परिवर्तन की इस पूरी कहानी पर ही सवालिया निशान लगा दिया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उत्पीड़न की बातों को भी सिरे से खारिज कर दिया।
पीछे क्या था कि एक यहाँ पे फायरिंग वायरिंग की घटना हो गई थी RTO ऑफिस में, तो उसमें क्या है कि इनके फोटोग्राफ्स, इनके लड़के लड़के के फोटोग्राफ्स उसमें आ गए थे वो फायरिंग वायरिंग करते हुए, तो उसमें एक पक्ष ने उसमें FIR वगैरह दर्ज करा दी थी। इसके पीछे जो है कोई रीजन नहीं है, रीजन बस ये है कि मतलब इस तरह से करके केस को खत्म कराने का है, मतलब जो मूल भावना इसके पीछे है वो यही है। अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा उत्पीड़न या कोई इस तरह की चीज नहीं है।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह तो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदू धर्म त्यागने की खबर भी सिर्फ प्रोपेगेंडा भर है। उनके मुताबिक सिर्फ लल्ला बाबू द्रविड़ और उनके परिवार के ही कुछ लोगों ने मूर्तियां विसर्जित करके तस्वीरें खिंचवाई थी, लेकिन लल्ला बाबू कहते हैं कि केस से इसका कोई लेना देना नहीं है, केस अदालत में चलेगा लेकिन वाल्मीकि समाज के उत्पीड़न को लेकर हम लड़ते रहेंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आगामी 21 मई को बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर समीक्षा के लिए आ रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान में आज राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए दो प्रमुख दावेदार हैं। पहले हैं मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी और दूसरे हैं इब्राहिम रईसी। इस बार रूहानी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मानसी बता रही हैं कौन कौन हैं इस रेस में।
19 मई को ईरान के 5.5 करोड़ मतदाता अपने नए राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे। ईरान का राष्ट्रपति चुनाव न केवल पश्चिमी देशों के लिए बल्कि खुद ईरान के समाज के लिए दिलचस्पी का विषय है। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव फ्रांसीसी चुनावी प्रणाली की तर्ज पर होते हैं। पहले दौर के मतदान में यदि किसी एक उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिले तो पहले दौर में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के लिए दोबारा वोट डाले जाते हैं। 19 मई को होने वाले चुनाव में कुल मिलाकर 1600 से ज्यादा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे थे, लेकिन केवल 6 प्रत्याशियों को छोड़कर बाकी सभी के नामांकन नामंजूर हो गए। योग्य घोषित दो उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया और अब बचे 4 जिनके बीच मुकाबला है। लेकिन मुख्य मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी, जिन्हें नरमपंथी माना जाता है, और कट्टर छवि वाले इब्राहिम रईसी के बीच ही माना जा रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति 68 साल के हसन रूहानी 2013 में देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे। सुधार और परिवर्तन का वायदा लेकर रूहानी पहली बार सत्ता में आए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कड़वे फैसलों को मीठी चाशनी में डुबो कर लिया करते हैं। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि पश्चिमी देशों के साथ परमाणु समझौता माना जाता है, जिसके तहत यूरोप और अमरीका समेत संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया। वहीं उनके मुख्य प्रतिद्वंदी 56 साल के इब्राहिम रईसी कट्टर न्यायविद के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें सर्वोच्च धार्मिक नेता सैयद अली खामनेई के नजदीक माना जाता है, लेकिन हाँ, उनका राजनीतिक अनुभव कम ही है। उन्हें देश के उप मुख्य न्यायाधीश के रूप में कठोर फैसले देने के लिए भी जाना जाता है। 1988 में रईसी के फैसलों से हजारों की संख्या में विरोधी राजनीतिक कर्मियों को फांसी दी गई थी। उस वक्त उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी कलम एक शब्द लिखना जानती है और वो है फांसी। देश के 12वें राष्ट्रपति चुनाव में दो अन्य उम्मीदवार भी हैं, जिनमें एक मुस्तफा मीर सलीम हैं, जो अपने हार्डलाइनर विचारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक रसूख लगभग ना के बराबर है। उनका कहना है कि मैं भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हूं, लेकिन अपना वोट इब्राहिम रईसी को दूंगा। चौथे उम्मीदवार के रूप में है मुस्तफा हाशमी तबा, जिनका ताल्लुक सुधारवादी दलों से जोड़ा जाता है।
तो इस बार ईरान के चुनाव में अलग क्या है? हमारे सहयोगी अपूर्व कृष्ण ने बात की ईरान में भारत के पूर्व राजदूत केसी सिंह से।
देखिए, सबसे पहले तो जो इनकी न्यूक्लियर डील कहते हैं, इनकी परमाणु मुद्दे पे जो इनकी संधि उनके साथ 5 परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल और जर्मनी के साथ हुई थी, जिसके साथ ही प्रेसिडेंट ओबामा ने इन पे जो सैंक्शन लगी थी उनको हटा दिया था ईरान पे, और जो इनकी उपलब्धि गिनी जाती है रूहानी साहब की, उसके बाद पहली इलेक्शन है। लेकिन तब तक अमेरिका के राष्ट्रपति भी बदल गए, अब ओबामा नहीं है, ट्रंप आ गए, और ट्रंप आने से वो ये कह रहे हैं कि ये गलत थी जो संधि हमने की है, ये गलत की है और ईरान को ज्यादा मजबूत कर दिया। और ये हैरानी की बात ये है कि जिस दिन ईरान में इलेक्शन है उसी दिन अमरीका के राष्ट्रपति ट्रंप खाड़ी के दूसरी पार रियाद में सुन्नी मुसलमानों की एक मीटिंग बुला रहे हैं और वहां पे वो मीटिंग करेंगे उसी दिन। तो उसका एक ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज जाता है ईरान के लोगों को कि अमेरिका अब वो अपनी पुरानी संधि से हटकर हमारे साथ दोबारा से झगड़ा करने का कोई माहौल क्रिएट कर रहा है।
यानी ईरान की घरेलू राजनीति पर इस बार उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की छाया दिखाई दे रही है।
जब ये इन्होंने एग्रीमेंट किया था अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट, तो उससे ये निकला था कि अब बाहर के देशों की इन्वेस्टमेंट आएगी, सैंक्शन हट जाएंगी, जो इनकी इकोनॉमी है जो पीछे हट गई थी बहुत ज्यादा ईरान की, कुछ तो तेल की कीमत गिरने से और कुछ सैंक्शन से, कि उसमें फर्क आएगा और नौकरियां मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, इकोनॉमी पिकअप होगी। वो नहीं हुआ, तो ये चीज रूहानी साहब के खिलाफ जा रही है और दूसरा जा रहा है कि अमेरिका से संधि करने का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। एक तो इकोनॉमी को फायदा नहीं हुआ और दूसरा जब राष्ट्रपति वहां बदल गए वो दोबारा से झगड़ा शुरुआत कर रहे हैं।
अच्छा, ईरान की राजनीति में एक बात ये रही है कि वहां राजनेता अपनी जगह है लेकिन जो असल ताकत होती है वो धार्मिक नेता के हाथ में होती है, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, वो काफी ताकतवर होते हैं। क्या वो स्थिति अभी तक बरकरार है या उसमें भी कोई बदलाव हुआ है?
रूहानी साहब की आज शायद वो पोजीशन नहीं है जो 4 साल पहले थी, और अगर पब्लिक ओपिनियन आपके साथ हो फिर थोड़ा रेवोल्यूशन गार्ड पीछे हट जाते हैं। पावर तो उनकी रहती है, जैसे पाकिस्तान की फौज है इस तरह उनकी पावर तो है ही है, लेकिन सुप्रीम लीडर भी ये देख के, ये खास वहाँ की डेमोक्रेसी का अपना असूल है कि हालांकि पूरी डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन ईरान और मुसलमान देश आसपास वालों के अलावा ज्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि एक बार जब वो तय कर लेते हैं कि ये कैंडिडेट हैं फिर उसके बाद इंटरफेयर आमतौर पे नहीं करते, जो भी उनमें से पब्लिक ने जिसको पसंद किया उसी को राष्ट्रपति बना देते हैं, तो उसका उसकी पावर स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि पॉपुलर वैलिडेशन लोगों की एक मोहर उस आदमी पे जब लग जाती है तो रेवोल्यूशनरी गार्ड भी थोड़ा सोच समझ के उसकी मुखालफत करते हैं।
ईरानी चुनाव पर ये थे केसी सिंह। भारत ने अमेरिका से 2 लाइट होविट्जर आर्टिलरी गन खरीदी है। भारतीय सेना ऐसी और आर्टिलरी गन अमेरिका से हासिल करेगी। 3 दशक के लंबे अंतराल के बाद भारतीय सेना के लिए आर्टिलरी गन खरीदी जा रही है। क्या खासियत है इनकी और नई खेप मिलने के बाद भारतीय सेना को कितनी मजबूती मिलेगी? संदीप सोनी ने बात की रक्षा मामलों के जानकार राहुल बेदी से।
पहली बात तो है कि ये एयर ट्रांसपोर्टेबल है, इनको हेलीकॉप्टर में आगे बॉर्डर तक भेजा जा सकता है काफी आसानी के साथ। वो जो हेलीकॉप्टर है वो भारत ने अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2 साल पहले, तो वो लगभग 1 साल 1.5 साल में आ जाएंगे वो हेलीकॉप्टर। तो अभी 2 बंदूकें आई हैं, अगले 1 हफ्ते 10 दिन में ये पोखरण भेजी जाएंगी जहां इनकी टेस्टिंग होगी और इनके जो फायरिंग टेबल्स होंगे जैसे ये गन्स परफॉर्म करती हैं वो बनाए जाएंगे और फिर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी आर्मी की आर्टिलरी यूनिट्स को, और इसके बाद 2019 में इनकी असली डिलीवरी शुरू होगी और 2021 तक 145 बंदूकें पूरी इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो जाएंगी।
अच्छा, यदि समझने के हिसाब से यदि बोफोर्स से तुलना करें इनकी तो कैसे कर पाएंगे?
देखिए, जो बोफोर्स की कैपेबिलिटी थी जो इंडिया ने 1987-86 में ली थी और इन गन्स की, इन गन्स में ये गन्स काफी हद तक उससे आगे बढ़ के हैं, ये मॉडर्न है, इनको लाइट वेट हाउडसर कहा जाता है और इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो रेंज है लगभग वो 30-35 किलोमीटर की रेंज तक है ये जो फायरिंग कैपेसिटी है, तो ये डिप्लॉय की जाएंगी चाइनीज बॉर्डर पर।
नई खेप आने के बाद भारतीय सेना की ताकत चीन और पाकिस्तान से यदि तुलना करें तो कहाँ देखते हैं आप?
इंडियन आर्मी की जो इक्विपमेंट है वो काफी हद तक पुराना हो गया है और उसकी रिप्लेसमेंट बहुत डिले हो गई है, बहुत देरी हो गई है उसकी रिप्लेसमेंट में, तो ये 145 गन्स की इंडियन आर्मी की जो कैपेसिटी है या जो इनकी कैपेबिलिटी है ये इतनी खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिलेड प्रोग्राम्स है आर्टिलरी की मॉडर्नाइजेशन का ये चालू हो गए हैं, मगर ये लगभग 10 साल का डिले है और उम्मीद है कि ये जो डिले है और ये जो देरी हुई है ये इंडियन आर्मी इसको मेकअप कर जाएगी अगले कुछ 4-5 साल में।
और आज आईपीएल 10 के दूसरे क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से, और पुणे की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। और हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। पहले सुनिए मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण सुधीर जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता नैंसी पेलोसी ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास छिपाने को कुछ नहीं है तो वो बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित हस्तक्षेप की स्वतंत्र जाँच होने दें। डोनाल्ड ट्रंप चुनावों में कथित रूसी हस्तक्षेप की जाँच को प्रभावित करने के आरोपों से इनकार करते रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमेर ने टेलीविजन पर दिए एक भाषण में कहा है कि वो सिर्फ इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार स्कैंडल के मामले में एक गवाह को रिश्वत देने का आरोप है। सीरिया में अमरीकी लड़ाकू विमानों ने सरकार समर्थक मिलिशिया बलों के एक काफिले पर हमला किया है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलात चोवाशुगलू ने एक वरिष्ठ अमरीकी राजदूत पर कुर्द लड़ाकों का समर्थन करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें वापस उनके देश भेजा जाना चाहिए। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज, पंकज प्रियदर्शी और मानसी दास को अनुमति दीजिए। और इस बीच अगर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहना है तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।